आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। सरकार के आर्थिक राउंड टेबल के अंतिम दिन कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स और उनके कोएलिशन समकक्ष टेड ओब्रायन के बीच जोरदार बहस हुई। आर्थिक गोलमेज सम्मेलन के तीसरे दिन मुख्य रूप से बजट सुधार, स्वास्थ्य सेवा, अर्थव्यवस्था और NDIS जैसे क्षेत्रों पर सरकारी खर्च की दक्षता पर चर्चा जारी रही। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की सचिव सैली मैकमैनस ने पीढ़ियों के बीच असमानता और आवास लागत जैसी समस्याओं को हल करने के लिए अधिक कार्रवाई की मांग करी। वहीं विपक्ष नेता सुजन ली ने NDIS में खर्च वृद्धि को कम करने के सरकार को हालिया प्रस्ताव की आलोचना की है। सरकार का नया कार्यक्रम थ्राइविंग किड्स उन बच्चों के लिए वैकल्पिक सहायता प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिन्हें माइल्ड से मीडियम ऑटिज्म है और जिनको विकास संबंधी परेशानियां हैं। सरकार का कहना है कि NDIS इन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। शुरुआती 2 मिलियन फेडरल वित्त पोषण और राज्यों द्वारा भविष्य में संयुक्त वित्त पोषण की उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम जुलाई 2026 से लागू होगा। सुजन ली का कहना है कि वे NDIS सुधारों के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें सरकार के दृष्टिकोण पर संदेह है। दूसरी ओर नेशनल्स पार्टी के सेनेटर मैट कैनवान ने कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स की आर्थिक गोलमेज सम्मेलन के जवाब में पार्लियामेंट हाउस में एक वैकल्पिक सम्मेलन का आयोजन किया। सेनेटर कैनवान के इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रोडक्टिविटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष गैरी बैंक्स भी शामिल रहे। बंद कमरे में हुई सरकार की आर्थिक गोलमेज के जवाब में होने वाली ये परिचर्चा आम जनता के लिए भी खुली रही। सेनेटर कैनवान का कहना था कि उनके सम्मेलन में ऊर्जा की कीमतों पर भी गहन चर्चा हुई जिसे उनके मुताबिक सरकार के फोरम पर नजरअंदाज किया गया। उनका दावा रहा कि उनकी चर्चा के आधे दिन में ही उतनी उपलब्धि हासिल हुई जितनी सरकार के सम्मेलन में 3 दिन में भी नहीं की जा सकी। दूसरी ओर विक्टोरिया की सरकार अगले हफ्ते एक विधेयक पेश करने जा रही है जिसमें राज्य की चाइल्ड केयर प्रणाली के त्वरित समीक्षा की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। ये विधेयक एक चाइल्ड केयर वर्कर पर बच्चों के यौन शोषण संबंधी सामग्री रखने और बच्चों के साथ बलात्कार सहित 70 से ज्यादा अपराध के आरोप लगने के बाद आया है। विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन का कहना है कि उनकी सरकार ने तत्परता और गंभीरता से कार्यवाही की है। सरकार ने समीक्षा में सुझाई गई सभी 22 सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। पहले चरण में बनने वाले कानून के तहत उन कर्मचारियों को तुरंत निलंबित करने का प्रावधान होगा जो अन्य राज्यों की सुरक्षा जांच में असफल पाए जाएंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूजीलैंड सरकार की एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि उनके देश को विदेशी हस्तक्षेप और जासूसी के बढ़ते खतरे खास करके चीन से का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की इस साल की रिपोर्ट में चाइना को क्षेत्र का बेहद प्रभावशाली और आक्रामक ताकत बताया गया है। इसमें कहा गया कि चीन ने न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय हितों को निशाना बनाने वाली कार्यवाहियों को अंजाम देने की इच्छा और क्षमता दोनों का प्रदर्शन किया है। सुरक्षा महानिदेशक एंड्रयू हैम्पटन का कहना है कि इन खतरों को अब कहीं ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं वेलिंगटन में स्थित चीनी दूतावास ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और अंत में खबरें भारत से। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस है जो इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया था और इसने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलता से पूरा किया। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिस पर सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से सभी 18 गेट खोले जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। ये 18 गेट 2020 के बाद अब खुले गए हैं। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसी के साथ 21 अगस्त 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।